समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कहते हैं जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो आइए ऐसी ही प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम, एक नई सुबह के साथ, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुजतबा। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और सायरा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग जया, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी विंटर विंटरी चिली मॉर्निंग ऑफ डिसेंबर एंड वेलकम टू आवर शो आज सवेरे। एंड जया हैज ओपन द शो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि जिंदगी में ना खुशी और गम तो लगे ही रहते हैं, बिना गम के खुशियों की कदर भी नहीं होती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम डाउन्स इन लाइफ सो दैट वी एक्चुअली वैल्यू द अप फेजेस ऑफ आवर लाइफ। और आपने जो कहा ना कि मुस्कुरा के अपने गमों को भी अपना लो तो वो खुशी में तब्दील हो जाते हैं, दैट रियली द सॉन्ग, वेरी क्लासिक सॉन्ग वॉज प्लेइंग इन माई हेड के मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आई थिंक वी ऑल शुड डेफिनेटली इम्बाइब द स्पिरिट कि भाई खुशी और गम दोनों हिस्सा हैं, बट जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन टुडेज शो। एंड ऑफ कोर्स वी हैव, इट्स अ न्यूज मैगजीन, सो मैगजीन का मतलब तो यही है कि उसमें सब कुछ है। वील गिव यू द परफेक्ट स्टार्ट टू योर डे। एंड सिंस ऑफ कोर्स इट्स फ्राइडे मॉर्निंग जया, आई एम श्योर ऑल द लिसनर्स आर ऑलरेडी इन द वीकेंड मोड। हर किसी का जो है ऑफिस किसी तरह बस होता है कि निकल जाए
आज ही तो जाना है, फिर उसके बाद वीकली ऑफ।
एब्सोल्युटली, सो यू कैन प्लान योर वीकेंड, बट वी विल गिव यू द परफेक्ट स्टार्ट टू योर डे बाय गिविंग यू अ डोज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, नॉट जस्ट नेशनली बट ऑल्सो इन योर ओन सिटी, बिकॉज वी हैव आर मेट्रो न्यूज सेक्शन इन विच विल ब्रिंग द न्यूज आपकी अपने शहर से। एंड ऑफकोर्स द लास्ट सेगमेंट इन विच विल टॉक अबाउट सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हु ईदर हैव द बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज टुडे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये सब कुछ होगा अगले रफली हाफ एन आवर में, दो मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस।
बिल्कुल, तो सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण यानी जी राम जी विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल रात मंजूरी दी, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम के विचार के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। श्री चौहान ने कहा कि सरकार समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया, और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी।
सरकार ने इसके माध्यम से वर्ष 2047 में विकसित भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना चाहती है। इस विधेयक से हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सांसद इंदुबाला गोस्वामी ने कहा कि देश की 70% आबादी गांवों में रहती है और इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक विकसित भारत बनाने में सहायक होगा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए।
Prime Minister Narendra Modi will participate in the closing ceremony of the second WHO Global Summit on Traditional Medicine in New Delhi today. On the occasion, the Prime Minister will address the gathering and launch several landmark Ayush initiatives, including My Ayush Integrated Services Portal, a master digital portal for the Ayush sector. He will also unveil the Ayush Mark, which is envisioned as a global benchmark for quality of Ayush products and services. A report.
During the program, Mr. Modi will release the WHO technical report on training in yoga and the book From Roots to Global Reach, 11 Years of Transformation in Ayush. He will release a commemorative postal stamp on Ashwagandha, symbolizing the global resonance of India's traditional medicinal heritage. He will felicitate the recipients of the Prime Minister's Awards for outstanding contribution to the promotion and development of yoga for the years 2021 to 2025. The Prime Minister will also visit the traditional medicine discovery space, an exhibition showcasing the diversity, depth and contemporary relevance of traditional medicine knowledge systems from India and across the world. Jointly organized by the World Health Organization and Ministry of Ayush, the three-day summit is being held under the theme Restoring Balance, the Science and Practice of Health and Well-being. Priya Mandal, Akashwani News, Delhi.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में देशभर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अजय कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। तेलंगाना लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बी वेंकटेशम ने बताया कि सम्मेलन में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ साथ सुधारों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी।
Prime Minister Narendra Modi has concluded his visit to the three nations, namely Jordan, Ethiopia and Oman. The Ethiopian government is expecting a lot from the outcomes of the visit of Prime Minister Modi. We have a report from our correspondent Sushil Tiwari.
India have been giving its support to Ethiopia in many sectors. Now, after the visit of Prime Minister Narendra Modi to the nation and the signing of many agreements, Ethiopian people are expecting this support to increase manifold in various sectors in the coming days. Talking to Akashwani News, Mayur Suryakant Kothari, the prominent personality of Indian diaspora here in Ethiopia, said that Indians in Ethiopia are also very happy and feel proud after the successful visit of PM Modi.
The fact that the India-Ethiopia relationship has been elevated to the strategic partnership level means a lot, because there will be a lot of alignment in international policies. There will be a lot of development in the trade, investment, infrastructure and related projects. The Indian community was very excited. We were happy to know that Prime Minister was awarded the highest civilian award by Prime Minister Abiy Ahmed, and it was a great visit, Sri Narendra Bhai Modi to Ethiopia.
There was tremendous enthusiasm among the people of Ethiopia during the visit of Prime Minister Narendra Modi, and the relations between the two nations are expected to reach new heights. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Addis Ababa, Ethiopia.
Violence has erupted in Bangladesh following the death of student leader Usman Hadi during a treatment in Singapore. Hadi was shot at by masked attackers in Dhaka last week and died of his injuries yesterday while being treated in Singapore. As news of his death emerged, hundreds of his supporters gathered in a square in the capital city to protest. Demonstrators vandalized offices of prominent Bangladeshi newspapers, the Daily Star and Prothomali, with one building set on fire. Protesters attacked the residence of India's Assistant High Commissioner in Chattogram, raising serious concerns over the security of diplomatic premises. As the situation escalated, law enforcement agencies fired tear gas shells to disperse the protesters.
रेलवे क्रिसमस और नए साल के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जोन में 138 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इसके लिए 650 फेरे मंजूर किए गए हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी रेलवे सबसे ज्यादा 26, मध्य रेलवे 18 जबकि दक्षिण मध्य रेलवे 26 रेलगाड़ियां चला रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इस दौरान त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए 12 रेलगाड़ियां चला रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इन विशेष ट्रेनों को चलाकर रेलवे यात्रियों को आराम और सुविधा दी जा रही है, जिससे यात्रियों को बिना परेशानी के क्रिसमस और नया साल मनाने में मदद मिलेगी।
On to sports now. In men's cricket, the fifth and final T20 international between India and South Africa will be played at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to start at 7 p.m. India, led by Surya Kumar Yadav, currently holds a 2-1 lead and will look to seal the series against the Proteas.
और अगर बात करें अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट की, तो आज सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच आज सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने अंतिम लीग मुकाबले में मलेशिया को 315 रन से हराया था। और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। तो सबसे पहले शुरुआत
चेन्नई से कीजिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डाउन साउथ फ्रॉम शहर चेन्नई। द डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास वी कामकोटी हैज सेड दैट स्टूडेंट्स ट्रेन्ड इन ट्रेडिशनल म्यूजिक कैन नाउ परस्यू इंजीनियरिंग एट IIT मद्रास। Addressing the South Indian Music Conference and Festival of the Indian Fine Arts Society in Chennai, he said that IIT interdisciplinary focus, he spoke about initiatives such as bamboo-based mic-less auditorium and proposed Ilaiyaraja Center for Excellence in Music. He also emphasized the scientific and mathematical foundations of music rooted in the Samved. Kamakoti conferred the Sangeete Kalasikhamani title on violinist Lalgudi G.J.R. Krishnan and Lalgudi Vijayalakshmi. Industrialist Nalli Kupuswamy Chetty presented several dance and music awards. Another news coming in from Chennai. Jai Hind Industries, a supplier of precision aluminium die-cast components, is investing 200 crore rupees to expand its aluminium die-casting facility near Chennai. The move will raise the plant's installed capacity to about 20,000 tons per year and add advanced vertically integrated manufacturing capabilities. The company is undertaking a capacity expansion at its factory located in a Kottayur village in Tiruvallur district near Chennai. As part of the project, the company will install high-pressure die-casting machines ranging from 1,400 to 4,400 tons, enabling the production of a broad mix of components from conventional internal combustion engine parts to EV components and large structural castings, according to a statement.
अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष तक DTC की सभी बसों को इलेक्ट्रिक बनाना है, ताकि दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में जुड़ी रही यह बसें राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जब प्रदूषण पे चर्चा होती है तो सबसे कारगर समाधान है कि सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त किया जाए, ताकि अधिकतम लोग सार्वजनिक परिवहन से जुड़े। और आज जिस तरीके से सरकार लगातार दिल्ली के परिवहन व्यवस्था को ठीक करने में जुटी है, 3400 बसें हमारी EV की आज तक हो गई है, जिसे अगले साल तक बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी पूरी की पूरी बस फ्लीट टोटल EV पे आ जाए।
इस बीच एक और खबर आ रही है दिल्ली से, जहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पिछले महीने हुए दिल्ली बम धमाके में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला यासीर अहमद डार है। यासीर को NIA की टीम ने दिल्ली से पकड़ा है। एजेंसी ने उसे लाल किले आतंकी हमले की साजिश में शामिल पाया है, जिसमें 11 लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय आज नई दिल्ली में सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि एक बहुभाषी मंच के रूप में यह महत्वपूर्ण पहल केंद्र और ग्रामीण समुदायों के बीच सीधे संवाद की पूर्ति करती है। सुजल ग्राम संवाद नीति निर्माताओं और जमीनी स्तर के लोगों के बीच एक सेतु बनाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई कार्यक्रम के कारण राजधानी के कुछ इलाकों में कल और 22 दिसंबर को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार कल मयूर विहार फेज 3 के DDA फ्लैट्स में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं 22 तारीख को निर्माण विहार, प्रीत विहार, लक्ष्मीनगर, शकरपुर, सरोजनी नगर में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने जरूरत के अनुसार पहले से पानी जमा रखें। पानी के टैंकर टेलीफोन नंबर 1916 पर उपलब्ध रहेंगे।
Now moving on to Bengaluru Jaya, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar ruled out any changes in the Bengaluru-Mysuru infrastructure corridor due to the Supreme Court ruling in the matter. He was replying during the question hour in the Legislative Council yesterday. और चलते चलते जल्दी से हैदराबाद की खबर भी दे दें दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार विल बी होल्डिंग अ मीटिंग विद बूथ लेवल ऑफिसर्स फ्रॉम तेलंगाना ऑन संडे इन हैदराबाद. The CEC will arrive in the city later today as part of his scheduled program covering Hyderabad and Sri Sailam in Andhra Pradesh. A press release stated that the CEC will have an interaction meeting with BLOs of Telangana at Ravindra Bharati in the state capital. He will also visit prominent heritage and public landmarks in Hyderabad and will participate in the Maha Aarti and have darshan at the Sri Mallikarjun Swami Temple in Sri Sailam in the early hours.
और अब समय है भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की खबर जानने की. कल मुंबई और नागपुर में कई अदालती परिसरों को बम की धमकी मिलने के बाद उसे खाली करा लिया गया. इनमें दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर, मुंबई की कई मजिस्ट्रेट अदालतें और नागपुर का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय शामिल था. हालांकि बम का पता लगाने और निरोधक दस्ते द्वारा सभी प्रभावित परिसरों की गहन तलाशी के बाद कोई विस्फोटक नहीं मिला. उन्होंने कहा कि ये धमकियां झूठी थीं. फर्जी ईमेल भेजने वाले का पता लगाने का प्रयास जारी है. अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज की जाएंगी. वहीं मुंबई के नेहरू विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है. इस कार्यक्रम में पांचवी से सातवीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त गणित कार्यशाला, गणित का रोमांच, एक ऑन द स्पॉट क्विज प्रतियोगिता, पजल कॉर्नर, व्यवहारिक गतिविधियां और सेमिनार शामिल होंगे. वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में 15वीं क्रिसमस कार्निवल का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश का अग्रणी पर्यटन स्थल बनने की राह पर है. पार्क स्ट्रीट क्रिसमस कार्निवल के उद्घाटन समारोह में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की अनूठी भौगोलिक स्थिति, जो गहरे समुद्र से लेकर हिमालय और हरे भरे जंगलों तक फैली हुई है, अब बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, जो पर्यटन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है. सांस्कृतिक उत्सव 30 दिसंबर तक जारी रहेगी और प्रदर्शनी और स्टॉल 5 जनवरी 2026 तक खुले रहेंगे. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और सायरा के साथ. कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है. सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की. जैसा कि हमने अभी शुरुआत में ही बताया कि थोड़ा ठंड का माहौल है, तो राजधानी दिल्ली में आज सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा. शहर में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
जय, आप थोड़ा मत कीजिए, बिकॉज कल से काफी ठंड हो गई है दिल्ली वालों के लिए.
बिल्कुल, और चाय की कमी हर वक्त लोगों को खल रही है. और अगर हम मुंबई की बात करें तो आज आसमान साफ रहेगा, हालांकि वहां कुछ खास ठंड नहीं देखी जा रही है. दिन और रात
और सुबह के समय सिटी, तो मुंबई में तो कभी इतनी ठंड नहीं होती जितनी दिल्ली.
अगर आज का न्यूनतम तापमान वहां देखें तो 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. और जॉय सिटी कोलकाता में आज सुबह हल्की धुंध रही और देर शाम तक मौसम साफ रहेगा. आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
That's right. And if we talk about Chennai, Bangalore, Hyderabad, तो जाहिर सी बात है southern cities में जैसे यहाँ लोग ठिठुर रहे हैं, thankfully वहाँ पे हमेशा खुशनुमा मौसम इस लिहाज से रहता है. Chennai will have some mist in the morning and partly cloudy sky later. Minimum temperature was 23, while maximum would be around 30 degrees Celsius. Bangalore will also have mist and minimum temperature was 16, while maximum will be around 28. Hyderabad will have a misty morning as well and mainly clear sky later. And the temperature in Hyderabad will hover between 15 and 31 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की. आज 19 दिसंबर 2025 है. 19 तारीख पर हमारे देश के इतिहास में एक बड़ी घटना दर्ज है. 19 दिसंबर 1961 को ही भारतीय सेना ने गोवा को 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आजाद कराया था. ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारतीय सैनिकों ने गोवा में प्रवेश किया था और इस ऑपरेशन की शुरुआत 18 दिसंबर 1961 को की गई थी. हालांकि अंत में 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण किया और गोवा मुक्त हो गया.
That's right. The operation was codenamed Operation Vijay by the Indian Armed Forces. It involved air, sea and land strikes for over 36 hours and it was a decisive victory for India that ended, as you rightly said, Jaya, 451 years of rule by the Portuguese over its remaining exclaves in India. The engagement lasted 2 days. 22 Indians and 30 Portuguese were killed in the fighting. The brief conflict drew a mixture of worldwide praise as well as condemnation. In India, the action was seen as a liberation of historically Indian territory, while Portugal viewed it as an aggression against its national soil and citizens. However, we all know that bhai jo wo log bahar aaye the aur sar zameen to Hindustan ki thi, and thankfully today we all have Goa, you know, in us, in our territory, because naturally I think it's one of the most beautiful places, not just in India but in the entire world. I always tell my friends, you know, Jaya, that, you know, duniya mein beaches bahut khoobsurat honge, ho sakta hai bahut saaf bhi honge, lekin jo vibe hai na Goa ki, which the people of Goa make that vibe, I think that vibe is just unmatchable.
बिल्कुल. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इतिहास के पन्नों में, जहां 1984 को दर्ज है कि चीन के प्रधानमंत्री जाओ जियांग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने हांगकांग चीन को वापस सौंपने के लिए चीन ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए. हालांकि ये एक देश दो प्रणाली के तहत 50 वर्षों के लिए उन्हें ये सौंपा गया.
And you're talking about news from Britain. Let me take you back to the year 1783 when William Pitt, a British Prime Minister, he actually was the youngest Prime Minister. Kuch guess kijiye kitni age pe wo Prime Minister bane honge?
40?
हम लोग को लगता है ना पॉलिटिशियंस के हिसाब से 40 इज वेरी यंग, बट विलियम पिट बिकेम ब्रिटेन्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 24. कैन यू इमेजिन व्हेन पीपल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच अ बिग कंट्री. In 1927, we all know ki aaj bahut hi, we'll talk about that later, but 1932, the British Broadcasting Corporation or BBC began transmitting overseas broadcast. And kyunki aaj bahut hi mahatvapurna din to hai hi hai, because aaj 19 December hai. और कहते नहीं, इतिहास में तो हर कोई ही रहा है, अच्छे लोग भी रहे हैं, बुरे लोग भी रहे हैं, और बुरे लोग का होना भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है जया, सो दैट यू नो फ्यूचर जनरेशंस काइंड ऑफ लर्न दैट वी डोंट हैव these kind of people ever. So aaj waisi ek insaan tha, Adolf Hitler, who took complete command of the German army in the year 1941. And also in 1950, the Chinese invasion of Tibet forced the Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, to flee for Yadong on the India-Tibet border.
1997 की बात कर रहे थे आप, जहां इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में से एक टाइटैनिक आज ही के दिन रिलीज हुई थी.
And again, let me take you back to 1958. The first radio broadcast from space was made when US President Eisenhower sent a Christmas message calling for peace on Earth. And on this day, 1972, Apollo 17 splashed down, concluding the last crewed US mission to the moon. Also, as you said, that Titanic was released today. What a movie. And, you know, we love itni zabardast movie jo hum log aayi thi, we were all enamored, and we still get enamored when we get goosebumps, especially in the last scene. And on this day, in 2004, the world's largest indoor water park, the Tropical Islands Resort, was opened in Berlin, Germany.
उससे थोड़ा पहले ले चलती हूँ मैं, पहले नहीं बाद ले चलती हूँ. 2018 में भारत के भूस्थिर संचार उपग्रह GSAT-7A को लेकर जाने वाले GSLV-F11 का श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से आज ही के दिन प्रक्षेपण हुआ था. वहीं स्वदेश में विकसित क्रूज रॉकेट पेनाक के अद्यतन संस्करण का आज ही के दिन 2019 में ओडिशा के तट स्थित केंद्र से सफल परीक्षण हुआ था. और अब समय आ गया है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. तो साल के आखिरी दिन, महीने का 19वां दिन, इतिहास में बड़ी घटनाएं हुई थी. भारत को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को 1927 में आज ही के दिन अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी. इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है. आजादी के इन मतवालों को काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए फांसी पर चढ़ाया गया था. तो जैसा कि हमने बताया, रामप्रसाद बिस्मिल को उनकी पुण्यतिथि या उनकी शहादत दिवस पर हम याद कर रहे हैं. वे न सिर्फ भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक या बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल के लिखे सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लक्षागृह में परिवर्तित कर दिया।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
माय गॉड, आज भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये सुनते हैं, isn't it? और कहते नहीं ये लोग ही कुछ और थे, आई मीन दे वर मेड ऑफ अ डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। एंड अशफाकुल्लाह, आई मीन द 6 feet tall हैंडसम यंग मैन हु इन द प्राइम ऑफ हिज यूथ खुशी खुशी जा रहा है और फांसी के फंदे को यू नो चूमते हैं ये लोग। एंड अशफाकुल्लाह व्हेन ही वाज अबाउट टू बी हैंग्ड ही सेड, कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, बहार आई है शोरिश है जुनून ने फितना सामा की, इलाही खैर रखना तो मेरे जेब और गरीबां की, भला जज्बात उल्फत भी कहीं मिटने से मिटे हैं। मतलब कहते नहीं आज भी जब इन लोग की बातें सुनते हैं और सोचते हैं कि ये लोग मतलब एट सच अ यंग एज, इमेजिन टुडे दे शुड बी, दे आर एन इंस्पिरेशन कि इतनी बड़ी उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। एंड आई थिंक फ्यूचर लीडर्स लाइक भगत सिंह, दे ऑल वर इंस्पायर्ड बाय सच सच मैग्नेटिक पर्सनालिटीज। सो वी रिमेम्बर अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन एंड राम प्रसाद टुडे।
आज ही पुण्यतिथि है जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की। महाराष्ट्र के वर्धा में सरला मिश्र और प्रसिद्ध हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के यहां सन 1948 में जन्मे अनुपम मिश्र पर्यावरण के लिए वह तब से काम कर रहे हैं जब से देश में पर्यावरण का कोई विभाग नहीं खुला था। बगैर बजट के मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस बारीकी से खोज खबर ली वो कई सरकारों, विभागों और परियोजनाओं के लिए आज भी संभव नहीं था।
टुडे इज गोविंद निहलानी'स बर्थडे, अ वेरी फाइन डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, नोन प्रेडोमिनेंटली फॉर हिज वर्क्स इन हिंदी सिनेमा, पर्टिकुलरली द मूवमेंट ऑफ पैरेलल सिनेमा। ही हैज बीन द रेसिपिएंट ऑफ 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड वेल, उनकी अगर फिल्मों की बात की जाए तो आक्रोश, अर्ध सत्य, जुनून एंड ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी जो बहुत अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई, बट देव मूवी अगर आपको याद है, बिकॉज दैट्स द ओनली मूवी इन विच करीना कपूर हैज नॉट वॉन अ सिंगल लेयर ऑफ मेकअप, शी इज बेयर फेस्ड एंड हाउ ब्यूटिफुल शी लुक्स। वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ कैलाश खेर, लेट्स लिसन टू इट।
के रंग रंग दीनी ओड़
हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा जगत में प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश को, आज उनकी जयंती है। इनका पूरा नाम ओम प्रकाश बख्शी था। 1919 को जम्मू में जन्मे ओम प्रकाश ने लगभग 350 फिल्मों में काम किया और अपने अनोखे तथा दिलचस्प किरदारों से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। नमक हलाल का दद्दू और शराबी का मुंशीलाल बनकर ओम प्रकाश ने प्रत्येक भारतीय के दिलों में अपनी जगह बनाई।
And today is obviously the birth anniversary of Edith Piaf, a very renowned French singer and lyricist, best known for performing songs in the cabaret and modern genres. Let's listen to that classic song, La Vie en Rose.
Elle est pour moi, moi pour lui dans la vie.
आज मानव कौल का जन्मदिन है, उन्हें भारतीय रंगमंच निर्देशक कहें, नाटककार कहें, लेखक, अभिनेता या फिल्म निर्माता, हर क्षेत्र में वे अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं।
That's true, and he has written and directed 13 plays, and what a sensitive personality. उनके बारे में बात ज्यादा नहीं करेंगे, उन्हीं ने एक बड़ी खूबसूरत कविता लिखी है दिसंबर, लेट्स लिसन टू इट।
आज कुछ बेहद नीरस है, जैसे तुम्हारे शरीर के वो 12 तिल 12 महीनों की तरह है। मैं हमेशा से साल बचाना चाहता था। मैं कसकर मुट्ठी बींचता मगर हर महीना तो उंगलियों के बीच से हंसता हुआ फिसल जाता। हर बार साल खत्म होने पर जब मैं मुट्ठी खोलता तो 11 तिल जा चुके होते थे, मगर एक दिसंबर ना फंसा रह जाता था रेखाओं में कहीं हमेशा। वो दिल्ली में दिसंबर की ठंड थी जब हमने आखिरी बार गले लगकर एक दूसरे को विदा कहा था।
श्रोताओं, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और सायरा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। नमस्कार, नमस्कार।